सात सूरदास जी थे। सातों सूरदास जी को किसी ने कहा कि सूरदास जी महाराज, गांव में एक हाथी आया है। ध्यान से सुनना हो कि एक हाथी आया है। सूरदासों ने कहा भी हाथी का नाम तो सुना है, चलो आज हाथी कैसा है जाने, दिखता तो था नहीं उनको। अब बेचारे सूरदास जी रवाना हुए अपने घर से, एक दूसरे के लट्ठी पकड़ते इशारा पकड़ते पकड़ते पूछा भी हाथी आया है या कहां, गांव में हाथी है महाराज। कहां हाथी, गांव के चौपाल के बीच में खड़ा है। अच्छी बात, हाथी के पास गए। अब एक सूरदास जी थे, उन्होंने हाथी की सूंड को देख लिया, माने हाथी की सूंड का स्पर्श किया, एक ने दांत का स्पर्श किया, एक ने कान का स्पर्श किया, एक ने उनके पैर का स्पर्श किया, एक ने उनके यहां चारों पैरों के बीच में जो वक्षस्थल था उसका स्पर्श किया, और एक ने पूंछ का स्पर्श किया। और वे सूरदास आपस में बात करें कि हाथी को जान लिया कि हां जान लिया। अब जिसने सूंड को देखा था उसने कहा कुछ नहीं है, एक पोला पोला नाड़ा होता है उसका नाम हाथी है और कुछ नहीं है। एक ने कहा कि हाथी, हाथी तो इतनी सी लकड़ी है, हमारे हाथ में लकड़ी उससे भी छोटा है, उसका नाम हाथी है। और कहा हाथी, हाथी तो छाजले जितना होता है, जो कूड़ा कचरा हम लोग बुआरते हैं वैसा एक छाजले के समान हाथी। जिसने कान देखा उसने इतना ही कहा, कान का स्पर्श किया। और एक ने जब उनके पैर का स्पर्श किया तो भाई हाथी तुम झूठ बोलते हो, हाथी कैसा है कि हाथी तो खंबे जितना है, जिस धर्मशाला में हम ठहर रहे हैं उसका खंबा है, ऐसा हाथी है, खंबे का नाम ही हाथी है। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा आंगन होता है, पक्का आंगन होता है, उसका नाम हाथी है। और एक ने कहा कि नहीं, हम जो झाड़ू फूस निकालते हैं उस झाड़ू का नाम हाथी है। अब बताओ, सब हाथी का वर्णन कर रहे हैं, अपनी अपनी दृष्टि से सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत बड़ी भारी भ्रांति है, बड़ी भारी गलती है, क्योंकि अनुभव किए हुए अनुभव किए बिना बोलते हैं। ऐसे ही कि हमारा जगत सच्चा है, ये दुख मिट जाए तो निहाल हो जाए, ये अलग अलग आत्माएं सब अलग अलग है, और ये संसार के भोग है यही सच्चा है और कुछ नहीं है। यहां जो अपनी तरफ से भोग ले लेगा वही जीत में है, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं है। और ये आत्मा है, ये त्रिगुणमय है, देखो तो सही, कभी अपने स्वरूप का गुणों से अतिरिक्त कभी बोध होता है, कभी नहीं होता। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के अलावा अपने स्वरूप का कहां ज्ञान होता है। ऐसे जो तरह तरह के विचार है अबोध कृता, ये वास्तव में अज्ञान से किए हुए है। त्वयि न ततः परत्र सभवेद अवबोध रस है, जब उन लोगों को अवबोध रस का माने ज्ञान का रस मिलता है तब महाराज ये सारी भ्रांति की धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। उन्हीं सूरदास जी को कोई आंख दे करके कहे कि लो सूरदास जी हाथी देखो, अब तुमने देखा था वो सच्चा है कि आप सच्चा है, तब कहेंगे कि नहीं हमारी भूल थी। सदैव मानस त्रिवेत्वहि विभात्य सदा मनुजात, कहते हैं संसार में ठीक दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार कुछ नहीं है, केवल मन की कल्पना मात्र है। चाहे जगत हो और चाहे जीव हो, जीव भी कल्पना है और जगत भी कल्पना है। देखो कभी कभी सूत्र रूप से ऐसी मुख्य बात कह देते हैं शास्त्रकार कि वहां हम लोगों की दृष्टि जाती नहीं, कि जीव भी मिथ्या है जगत भी मिथ्या है। अरे जीव एक कल्पना ही तो है, तो परमात्मा का ही रूप, हमने उसको जीव मना लिया, जीव कह दिया। कहते हैं कि मनस त्रिवी त्वयि विभात त्यसत असद आमनुजात, आमनुजात माने जीव पर्यंत जो कुछ जगत है वह भी वास्तव में सदैव माने सत की तरह प्रतीत होता है, सत नहीं है और ये केवल मनोविलास मात्र है। और सद अभिमृशन्ति, और सारे जगत को सत मान लेते हैं और जीव को भी ऐसा ही मान लेते हैं कि जीव है, कि नहीं नहीं आप विचार करके देखो, इदम आत्मतया आत्मविदय, आत्मज्ञानियों ने इस जगत को इदमता के रूप में देखा है, माने यह है, तो जो यह होता है वो मैं से अलग होता है तब हम उसको यह बोलते हैं। तो जो जानने वाला होता है उसी की सत्ता है, जो जानने में आने वाला है उसकी तो केवल कल्पना है। सही दृष्टि से देखा जाए तो वो जानने में आने वाला भी वही है जो जानने वाला है, जानने में आने वाला और जानने वाला ये दोनों वास्तव में भिन्न नहीं है, एक ही है, लेकिन एक व्यवहार करने के लिए जानने वाला और जानने में आने वाला मन की कल्पना ही है। अच्छा बताओ, क्या कभी सोना है वो सोना यदि कंठा बन जाता है, उसके द्वारा हमने कंठा बना लिया, उसके द्वारा कानों का आभूषण बना लिया, नाक का आभूषण बना लिया, अंगुली का आभूषण बना लिया, आभूषण बनाते हुए सोने के अनेक नाम और रूप है, लेकिन उसमें तात्विक दृष्टि से जो स्वर्णत्व है, सोनापना है, वो सोनापना थोड़ा ही नष्ट होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा स्वकृतम अनुप्रविष्टम इदम आत्मतया अवसितम। देखो वेद स्तुति में श्रुतियों ने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए वेद स्तुति का तात्पर्य ही थोड़ा कठिन होता है, लेकिन शब्द है वेद स्तुति के जो श्लोक है, इनके शब्द बहुत सरल है कि स्वकृतम, परमात्मा ने संसार को बनाया और बना करके अनुप्रविष्टम, बनाया तो कहां से बनाया, अपने में से बनाया। जैसे हम लोग स्वप्न को बनाते हैं तो अपने में से बना लेते हैं, अपने में से ही स्वप्न को बनाते हैं और अपने ही स्वप्न के रूप में बनते हैं, अपने ही देखने वाले हैं और अपने ही सुख भोगने वाले और अपने दुख भोगने वाले। कल्पना करो कि स्वप्न में हमने देखा कि बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है, संतों का वहां पर सत्संग हो रहा है, तो संत जो कहने वाले वो भी हमें, सुनने वाले भी हमें, और फिर हम सत्संग सुनकर के रवाना हुए तो रस्ते में कोई चोर मिल गया तो उसने हमारी चोरी कर ली, तो चोरी कर ली वो चोर कर्म भी हमें और चोर भी हमें, और ले जाकर के हमने पुलिस को दे दिया और पुलिस ने उसके डंडा मारा और हम देख रहे हैं तो वो डंडा भी हमें, पुलिस भी हमें, चोर भी हमें, वो डंडा भी हम खा रहे हैं और हम ही देख रहे हैं और हम ही हर्षित हो रहे हैं और हम ही वहां पर मूर्छित हो रहे हैं, वो डंडा खाते खाते चोर मूर्छित हो जाए वो भी हम ही हो रहे हैं, क्योंकि जगने के बाद वहां कोई भी नहीं अपने अलावा। इसीलिए एक परमात्मा ही आप हैं प्रभु, ये सारा जगत जो हमको दिखाई देता है, इसका कर्ता भोक्ता ये सब आप ही है, है तो आप ही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है आपके अलावा। तो स्वकृतम अनुप्रविष्टम इदम आत्मतया अवसितम, इसलिए महाराज ये आत्म रूप ही है, आप ही का रूप वाला है, इसके अलावा जो कुछ है सब केवल हम लोगों की कल्पना मात्र है। इस प्रकार से संपूर्ण जीवों का अधिष्ठान होने के कारण, सबका आश्रय होने के कारण से जो आपकी सेवा करते हैं, आपका भजन करते हैं, वे मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके बहुत आनंद के साथ यहां जाते हैं, और जो महाराज आपकी सेवा नहीं करते हैं वे यहां आपकी वाणी में फंस जाते हैं, वाणी रूपी डोरी में फंस जाते हैं, और अमुक कर्म करो और अमुक फल मिलेगा, इसमें फंसे हुए लोग आवागमन के चक्कर से छूटते नहीं है। आपसे प्रेम करने वाले पवित्र हो जाते हैं, आपसे विमुख रहने वाले ऐसे ही आवागमन के चक्र में रहते हैं, और आपका कोई कम स्वामित्व नहीं है। आप महाराज बड़े विचित्र हैं, आप सब इंद्रियों से रहित होकर के सारा व्यापार कर लेते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम और सर्वेंद्रिय विवर्जितम। आपके कान नहीं है परंतु आप शब्दों को सुनते हैं, आपके जिह्वा नहीं है लेकिन फिर भी आप बोलते हैं, फिर भी आप चखते हैं, आपके त्वचा नहीं है फिर भी आपका आपको स्पर्श का ज्ञान होता है, आपके कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। तो त्वम अकर्ण है, तुम इंद्रियों वाले नहीं हो लेकिन फिर भी अखिल कारक शक्तिधर है, सब प्रकार की काम करने वाली शक्ति को आप धारण करने वाले हैं, अतः स्वराट आप अपने में ही विराजमान है और सबके ऊपर आपका आधिपत्य चलता है। जैसे छोटे छोटे राजा हैं वो अपने से बड़ों को ला करके अपना कर देते हैं और उनको अपनी भेंट देते हैं, और वो अपने से बड़ों को देते हैं, वो अपने से बड़ों को देते हैं, इसी प्रकार से अनिमेषा माने इंद्रादि देवता है वो तो ब्रह्मा को देते हैं और ब्रह्मा ला करके और आपको देते हैं। अब महाराज वो तो अजया घमंड के अंदर समदंती कहते हैं वो ब्रह्मा है इंद्र है, वो मानते हैं कि हम बड़े हैं। अरे तुम काय के बड़े हो, तुम्हारे पर किसी न किसी का शासन चलता है कि नहीं, तुम किसी के अधीन हो कि नहीं, तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं कहेगा कि हम स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र नहीं हैं। तो महाराज इनसे पूछा जाए कि जब आप परतंत्र हो तो किसका शासन है, किसके अधीन हो, तो मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा से लेकर सामान्य कीट पतंग तक सब के सब आपके अधीन है, आपके अधिकृत है, आपके अधीन रहने वाले हैं। अतः भवतश चकिता, आपसे हरदम ये चकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, आप सबके ऊपर सिरमौर हैं। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं वे इस माया से पैदा हुए तो अपने आप पैदा नहीं हुए। उदीक्षया आपका संकल्प किया है, आपने संकल्प किया तो संकल्प से ये पैदा हुए हैं। और आप जो संकल्प करता है वो कि वो इस संकल्प से भी पर है, इनसे भी आप विचित्र हैं। आपके लिए न कोई पर है, न कोई अपर है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। बताओ, एक ही आकाश ही आकाश है। आकाश ऊंचे से ऊंची जगह पर, नीचे से नीचे जगह पर आकाश की जैसी व्याप्ति है, ऐसे सब जगह आपकी व्याप्ति है। तो ऊंचा नीचा आपके स्वरूप में नहीं है, ये सब प्रकृति के राज्य में चलता है। अब ये जीव कहते हैं कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, तो उनके अनुभव से पूछा जाए कि वे स्वतंत्र नहीं है। अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृतो यदि सर्वगता तरी न शास्यते इति नियमो ध्रुव न इतरथ। कहते हैं कि ये जीव है, अपरिमित है, और सबके सब जीव व्यापक है, और सब सबगत सर्वगत है, सब स्वतंत्र है। ऐसा कोई कहेगा तब तो महाराज ये व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि इन जीवों को अपने अपने कर्मों के फल के अधीन हम देखते हैं, और इनके ऊपर किसी न किसी का शासन चल रहा है ये भी हम देख रहे हैं। यदि कोई शासक नहीं होता तो ये अपने कर्मों का फल क्यों भोगते? भाई यदि चोर चोरी करने में स्वतंत्र है, स्वतंत्रता पूर्वक चोरी करता है और उसका फल भी वो न भोगे, ऐसी उसमें स्वतंत्रता रहे, तब तो भाई सृष्टि में कितना अनर्थ हो जाएगा। मनमाए जो व्यवहार करेगा और उसका उसको फल देने वाला ही नहीं, तो चाहे जैसा करेंगे लेकिन होता नहीं है। चोर चोरी करता है अपनी मर्जी से, परंतु उसके ऊपर जो दंड आता है वो किसी न किसी और विधान से आता है। इसलिए सब जीव एक नियम के अंदर बंधे हुए हैं। यदि ये जीव आपसे पैदा हो न होते और आपके अधीन नहीं होते तो आप इनके नियामक भी नहीं होते। आपको नियंत्रित करने का अधिकार इसलिए मिला है कि जीव आपके हैं। कितनी आपके साथ जीव की जीव के प्रति आत्मीयता जुड़ी हुई है। अजानी चयनमयम, क्योंकि ये ब्रह्ममय जीव है, ये अजानी आपसे पैदा हुआ है, इसीलिए नियंत्रित भवेत, आप इसके नियंता है, इसके ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। और जब इसके ऊपर आपका नियंत्रण चलता है तो ये आपके अधीन है। इस प्रकार से जो जानते हैं वो तो सही जानते हैं, और इसके अलावा सोचे कि नहीं हम अपने स्वरूप को जान लिए, परमात्मा को जान लिए। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, जो कहते हैं हम परमात्मा को जान गए वो जाने ही नहीं है। क्यों? कि वहां परमात्मा ज्ञेय हो और हम परमात्मा को जानने वाले ज्ञाता हो, ज्ञाता ज्ञेय का भाव रहता ही नहीं है। इसलिए जानने के अभिमान करने वालों से आप दूर है। और जो कहे भाई क्या है, जैसे हमने दुनिया को देखा ऐसे परमात्मा जानने में नहीं आते, ऐसा जिनका मानना है उनका सही जानना है। तो समम अनुजानताम यद अमतम मत दुष्टतया, जो सोचते हैं कि हम जान गए, नहीं नहीं उनके मत में दोष आएगा। और जो ये मानते हैं कि परमात्मा हमारी बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, उनका जानना बिल्कुल सही है। और महाराज जिस प्रकार से एक पानी का बुदबुदा है, पानी का बुदबुदा पानी और वायु के संयोग से पैदा होता है, इसी प्रकार से प्रकृति से और आपका जो चेतन है, इन दोनों के संयोग से जीवों का विकास हुआ है। उभय योजन न केवल प्रकृति से बनता है और न केवल पुरुष से ही बनता है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो, तो काय से कि उभय युजा, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं तब जाकर के जीव पैदा होता है। तो जीव का काम क्या है कि विविध नाम गुण वाले आपके साथ वो प्रेम करे, तो उसको सब प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने की, प्रकृति से अलग होने की इसमें सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य इसको मिलेगी और आपके स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा। महाराज जिसने शहद ले लिया है उसको बताओ कौन से रस की उसमें कमी है। किसी को कहा जाए तुमको थोड़ा आजकल तिक्त रस लेना चाहिए तो शहद ले लो, मधुर रस लेना चाहिए तो शहद ले लो। जैसे शहद के अंदर सारे के सारे रस समाविष्ट है, ऐसे ही आपकी प्राप्ति हो जाने के बाद, आपका अनुभव हो जाने के बाद, फिर ये जगत का और आपका और अपने स्वरूप का क्या अनुभव है, ये अपने आप उसको स्वतः हो जाता है। सरितई वार नवे, नदी है वो जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जाना आना एकदम पूरा हो जाता है। इसलिए महाराज आपकी प्राप्ति ही जीव के लिए संतोषदायक है, और कोई जीव की प्राप्त और कोई जीव को मिलेगा उसे जीव को संतोष नहीं होगा। और महाराज निरसुतव मायया भ्रम अवीशु अवगत्य वृषम त्वयि सुधयो भवे ददति भावानुप्रभवम्। कहते बुद्धिमान लोगों ने देखा कि ओहो जितने जीव समुदाय भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, ये कहां की गलती से भटक रहे हैं कि केवल मनुष्य जन्म की गलती से भटक रहे हैं। तो ऐसा विचार करके जब अपने को मनुष्य शरीर मिला है तो अपने को किसी प्रकार से अब गलती नहीं करनी है। ऐसा विचार करके आपके अंदर ही भाव को बढ़ाते हैं, आप ही के अंदर ही वो प्रेम बढ़ाते हैं। तो महाराज ऐसे लोग जो कि संसार को देख करके डरते हैं, काल को देख करके डरते हैं, महाराज ऐसा डर उन ज्ञानियों को नहीं होता है, महात्माओं को नहीं होता है, क्योंकि वे काल से ऊपर उठ जाते हैं और आपकी शरण में आ जाते हैं। कहते हैं कि भाई प्राणायाम आदि करें तो उसके द्वारा मुक्ति हो जाती है कि नहीं? महाराज केवल प्राणायाम के द्वारा नहीं होती है। मन इतना चंचल है, मन घोड़ा इतना चंचल है कि बिना गुरु के ये कभी कब्जे में आता नहीं है। तो मन है इसको गुरु जी के कहे कहे साधन के अनुसार ही लगाना चाहिए, तब ये मन बस में आएगा। नहीं तो व्यसन शतान्विता समावाह या गुरुश्चरणम, गुरु जी का चरण का सहारा नहीं लोगे तो सैकड़ों प्रकार की विपत्तियां आएगी। और जिस प्रकार से कोई व्यापारी बहुत बड़ा माल लेकर के नाव में बैठा हुआ और पार होना चाहता है, लेकिन पार करने वाले को नाव चलानी नहीं आती है तो व्यापारी और वो धन दोनों ही संकट में पड़ जाए, ऐसे ही यदि श्रेष्ठ गुरु के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास यदि नहीं जाएंगे और वहां जाकर इस मन के ऊपर रगड़ उनके शब्दों की वचनों की नहीं लगेगी, तब तो भाई ये मन बहुत हमको कष्ट देगा, बड़ी इससे हमको दिक्कत हो सकती है, कठिनता उठानी पड़ेगी। इसलिए उन महात्माओं के पास जाओ, वही हमारे जीवन की नैया पार करने वाले हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहते स्वजन सुतात्मदार धन दाम मधुरा सुरथई त्वयि सति किम नृणाम शयत आत्मनि सर्वरसे। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, जब आप इसके पास मौजूद हैं तब इस जीव को क्यों धन की जरूरत पड़े, क्यों बेटा बेटी की जरूरत पड़े, क्यों स्त्री की जरूरत पड़े, क्यों वो तरह तरह से रथ आदि की जरूरत रखे, मकान की जरूरत रखे, अर्थात इनमें वो क्यों प्रेम देखे, क्यों सुख देखे। आनंद स्वरूप आप हैं, वो इसको मिले हुए हैं, तो इसको आपके ऊपर ही दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा जब आपके ऊपर दृष्टि नहीं रखता है तो वो अपने आप को भी भूलता है और आपको भी भूलता है। अतः उसका जब तेज, जब उसका सामर्थ्य उसको उपलब्ध नहीं होता है तो तरह तरह से ये धक्का खाता रहता है और संसार के भोगों में, संयोगजन्य भोगों के अंदर धक्का खाका करके एक सुखा भास का अनुभव करता है, सुख का अनुभव नहीं करता है। और महाराज जो आप में प्रेम करने वाला है वो तो महाराज अपने हृदय में आपको धारण किया हुआ जहां जहां जाता है वहां वहां वो स्थान तीर्थ बन जाता है। सच पूछा जाए तो आपके चरण है ही तीर्थ, ये तीर्थ, इन चरणों को जो तीर्थत्व प्रदान हुआ है, आपके चरणों में जो तीर्थत्व आया है, इसको धारण करने वाले ऋषि मुनि जहां चले जाते हैं वो स्थान भी तीर्थ हो जाता है। केवल एक बार अपने मन को आप में लगाने की जरूरत है, फिर उसके बाद देखो इस मन को जब आप मिल जाते हैं तो दूसरी जगह इसके जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, थोड़ी देर आलस भी आ गया तो कोई हर्जा नहीं, अब सार बात बता रहे हैं। इतनी सार बात है, वेद स्तुति के अंदर बहुत सार बात है, कई प्रकार की शंकाओं का समाधान होता है इस वेद स्तुति के प्रकरण में, उसमें भी बहुत ध्यान देने की बात है। अब ये 4-5 श्लोक है, इनमें बहुत ज्यादा ध्यान देवे आप, हमारी कई शंकाओं का समाधान होता है। सतइदमुत्थितं सदिति चेन्ननुतार कहतं व्यविचारति क्वच क्वच मृषा न तथो भययुक् व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्ध परम्परया भ्रमयति भारते त उरुवृत्ति विरुक्थ जडान। कोई कहे कि भाई इस जगत के महाकारण कौन है, कि परमात्मा है। परमात्मा कैसे है कि वो सत है। तो जब परमात्मा सत है तो परमात्मा से पैदा हुआ जगत भी सत होना चाहिए। सत इदम उत्थितम सदिति चेत, सत ही होना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं हम नहीं मानते। कह रहे महाराज इतनी प्रबल युक्ति है, सत से पैदा होने वाला सत ही होता है, सत ही होना चाहिए। सोने से बना हुआ आभूषण सोना ही है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी ही है, लोहे से बने हुए शस्त्र है वो लोहा ही है। ऐसी स्थिति में आप कारण को कार्य के रूप में देखते हैं तो वो कारण कैसा है, कार्य भिन्न कारण है। तो आप सत से बना हुआ संसार असत क्यों हो गया, ये असत्ता कहां से आ गई, तो सत क्यों नहीं रहा, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं तर्क हतम, ये बात तर्क से युक्ति संगत नहीं है। क्यों नहीं महाराज, सोने से सोना ही तो बना और शस्त्र है वो लोहे से बना, तो लोहा और शस्त्र दो थोड़े ही हुआ, तर्क क्यों नहीं चलता है। कहते हैं भाई तर्क तो वहां चलता है जहां सृष्टि में सब जगह एक जैसा नियम रहे, सब जगह एक जैसा नियम रहे तब व्याप्ति होती है। विद्वान लोग जानते हैं कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नी, ये एक व्याप्ति है, दुनिया में कोई भी चीज इसको काट नहीं सकती, जहां धुआं है वहां आग है, ये व्याप्ति बन गई। तो सतः इतम उद्दितम सद इति, सत से उत्पन्न होने वाला सत ही होता है, ऐसी कोई व्याप्ति बना सकता है कि बना सकते हैं, होता है ना कना नहीं बना सकते। तर्क आतम क्यों, क्या व्यभिचारती, जैसा कारण है वैसा कार्य बने, ये व्यभिचार होगा, ये दोष होगा, ये ऐसा नियम बन नहीं सकता है। कि क्यों नहीं बन सकता, कि कहीं कहीं बन सकता है पर सब जगह नहीं बन सकता। कैसे, अच्छा यदि कारण के अनुसार ही कार्य होता है तो कार्य कारण के नष्ट हो जाने पर फिर कार्य भी नष्ट हो जाना चाहिए क्या। हां हो जाए तो क्या है, हो जाए तो क्या है, तो अब बात पर दृढ़ रहना, हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, और ऐसा दुनिया में होता भी नहीं। बाप है वो बेटे का कारण है, बाप मर गया तो बेटा भी मर जाना चाहिए, पर मरता है क्या, जिस दिन जिस घड़ में जिस क्षण में बाप मरा उसी क्षण में बेटा ही मर जाना चाहिए, नहीं मरता। तो कारण के मर जाने के बाद कार्य मर जाना चाहिए पर नहीं होता। कहते हैं कि भी ऐसी बात नहीं है, और कोई बात बताओ, ये तो अलग अलग प्राण पिंड अलग अलग हैं, अच्छी बात, जैसा कारण हो वैसा ही कार्य होना चाहिए ना। तो ये हमारा शरीर है, ये प्राणवान है, इस प्राणवान शरीर से हमारे रोम पैदा हुए हैं। अब देखो शरीर के ऊपर कोई थोड़ा सा भी सुई का भी स्पर्श करेगा तो दर्द होगा, लेकिन इस रोम को यदि कोई काटेगा तो हमारे दर्द होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब प्राणवान शरीर से निष्प्राण रोम कैसे पैदा हो गए भाई, निष्प्राण रोम नहीं होने चाहिए पर हुए। इसका अर्थ यही है कि जैसा कारण है वैसा ही कार्य हो, उसी जाति का कार्य हो, यह नियम नहीं है। और कहीं कहीं तो क्वचम ऋषा, कहीं कहीं तो बिल्कुल उल्टी बात हो जाती है। घड़े बनने में कितने कारण होते हैं, मिट्टी भी है, कुम्हार भी है और डंडा भी है, इन सब को लेकर के जिसे थपथपाते हैं वो सब कारण बनते हैं, लेकिन उन सब के मर जाने के बाद भी घड़ा तो घड़ा ही रहता है। कुम्हार के मरने से घड़ा नहीं फूटता, लकड़ी के टूटने से घड़ा नहीं फूटता, और घड़े के फूटने से कोई लकड़ी पर असर पड़ता नहीं, कुम्हार पर असर पड़ता नहीं। तब कहते हैं देखो हमारा तात्पर्य यह है कि भाई ये कार्य कारण भाव है, ये कार्य कारण भाव निमित्त कारण को लेकर नहीं उपादान कारण को लेकर के है। तो कहते हैं उपादान कारण में भी बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी कि किसी को आप कारण मान रहे हो और किसी को कार्य मान रहे हो। यदि कारण और कार्य सर्वथा अभिन्न है तो इन दो शब्दों के बोलने की जरूरत क्या है, किसी न किसी अंश में कारण और कार्य में भिन्नता है तभी इन दोनों शब्दों को कहा, नहीं तो एक ही बात बोल देते। तो फिर का अच्छा बात क्या है, कहते हैं बात क्या है कि बात है उभय युग, माने दो का जब संयोग हुआ है तब ये सृष्टि हुई है, एक तो प्रकृति और एक पुरुष, एक सत और एक अज्ञान, सत और अज्ञान दोनों मिले हैं तब जाकर के ये सृष्टि पैदा हुई है। और वो भी कैसी हुई है, वैसे ही जैसे सर्प है, जैसे कोई रज्जू है और सर्प है। अब रज्जू और सर्प है उसमें देखा जाए डोरी के अंदर हमने सर्प की भ्रांति की, अरे ये सर्प है, तो डोरी और सर्प का कारण कौन है, सर्प का कारण डोरी है, लेकिन डोरी से भय पैदा नहीं होता, सर्प से भय पैदा होता है, तो कारण और कार्य अलग अलग हो गए ना। तो कहते हैं कि नहीं, यहां डोरी कारण नहीं है सर्प का, देखने वाले का अज्ञान कारण है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अधिष्ठान और अज्ञान ये दोनों का संयोग होता है तब सृष्टि पैदा होती है। तब कौन सी सृष्टि पैदा हुई कि सर्प की सृष्टि पैदा हुई, देखने वाले का अज्ञान और डोरी। तो सत और अज्ञान इन दोनों के मिलने से सर्प की जैसे उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही ये है तो परमात्मा ही, लेकिन इसको देखने में हमारी अज्ञान की वृत्ति काम आई है, इस अज्ञान के कारण से हमको जगत का आभास होता है। हाँ, ये बात अब निर्णय हो गया कि इस बात में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जगत का आभास है, जगत नहीं है, बात तो यही आगे टिकी ना। जगत नहीं है, जगत का आभास है, सर्प नहीं है, सर्प का आभास है। कोई ज्ञानी महात्मा आकर कहेंगे कि भाई ये जगत नहीं परमात्मा है, तो हमको ये परमात्मा का रूप दिखता है कि ओ ये पंडाल भी परमात्मा है। कैसे? कि इसमें लगी हुई लकड़ियां है पृथ्वी से बनी हुई, पृथ्वी है वो जल से बना हुआ, जल है वो आग से पैदा हुआ, आग वायु से, वायु अहंकार से, आकाश से, आकाश अहंकार से, अहंकार प्रकृति से, ओहो सब परमात्मा, और प्रकृति परमात्मा से, तो परमात्मा का रूप हो गया ना। इस ढंग से यदि इसको व्यवहार के लिए कहते हैं ये पंडाल है, ये बल्ली है, ये कपड़ा है, ये माइक है, ये लाइट है, व्यवहार के लिए बोलते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार से आपत्ति नहीं है। व्यवहारित ये विकल्प है, इसी तरह यदि व्यवहार के लिए विकल्प किया है एक ही सत वस्तु में, यदि सत वस्तु में व्यवहार के लिए विकल्प नहीं होगा तो व्यवहार नहीं चलेगा। तो व्यावहारिक सत्ता में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक व्यावहारिक सत्ता होती है, एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक पारमार्थिक सत्ता होती है। हमारी दृष्टि पारमार्थिक सत्ता पर है और आपका प्रश्न व्यावहारिक सत्ता पर है। व्यवहार भी परमार्थ के लिए है, परमार्थ व्यवहार के लिए नहीं होता है, व्यवहार ही परमार्थ के लिए होता है। तो अंतिम सिद्धि पारमार्थिक सत्ता के लिए है और अंध परंपरा इसी तरह ठीक है। एक अंध परंपरा चल पड़ी कि लकड़ी है, ये कपड़ा है, ये माइक है, ये लाइट है, ये लट्टू है, ये आसन है, ये सब एक व्यवहार के लिए अंध परंपरा चल पड़ी, तो उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इस व्यवहार में यदि आप पारमार्थिक सत्ता जोड़ोगे तो भाई भ्रमयति भारती, व्यवहार को सच्चा मानोगे तो फिर इस व्यवहार को ही सच्चा मान लोगे, दिखने वाली चीजों का ही महत्व हृदय में बैठेगा, जिससे भ्रमयति भारती त उरुवृत्ति विरुक्त जड़ान, अमुक कर्म करो और अमुक फल मिलेगा, ये जो वेदों की बात है ये मूर्खों को ही प्रभावित करने वाली है। अर्थात व्यवहार को सच्चा मानने वाला मूर्ख है, वास्तविक सत्ता तो केवल एक सत्य तत्व की है। क्यों क्यों है? कि न इदम अग्र आस न भविष्य दातो निधन आदनु, ये संसार पहले नहीं था, जिन वस्तुओं में हमारा मोह है ये पहले नहीं थी और ये बाद में नहीं रहेंगी और ये अंत में जाकर परमात्मा में ही लीन होती है, तो केवल मिथ्या इनकी प्रतीति हो रही है। इसलिए द्रविण जाति विकल्प पथे, ये जाति है, ये वस्तु है, ये तरह तरह के भेद है, ये केवल मनोविलासम, मन का विलास मात्र है और मूर्खों के लिए सत्य हो सकता है। रितम इति अवयवंती अबुधा, मूर्ख लोग इसको सत्य मान सकते हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में ये सत्य नहीं है। और अपने यहां वही ज्ञानियों की चर्चा है, ज्ञानियों की मान्यता वही माना जाएगा। और हे परमात्मन, सयद अजया त्वदा मनुषयित गुणाश्च जुषन भजति सर्वपताम तदनु मृत्युम अपेत भग त्वमुत जहासिता महिरिव त्वचमात्त भगो महसि मही अशेष्ट गुणिते अपरिमेय भग। माया में और उन्हें परमात्मा में और जीवात्मा में अंतर कितना है? यूं तो कोई अंतर नहीं है। आप ही जीव रूप से आए और ये जीव रूप से आए हुए आप जब माया को स्वीकार करके संसार का विषय भोग करते हैं, उस समय में अपने स्वरूप को आप भूल जाते हैं। और जब आप अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो जैसे सर्प के ऊपर आई हुई कैंचली है, वो सर्प उसको उठा देता है, हटा देता है, कैंचली में से निकल जाता है, कैंचली को है जैसे छोड़कर उससे अलग हो जाता है, ऐसी माया से अलग जो आपका रूप है उसमें आप स्थित होते हुए माया को कैंचली के समान छोड़कर आप सर्प के समान अलग के अलग रहते हैं, उस समय में महाराज आपका जो आनंद है वो आनंद का आपको अनुभव होता है। और उस समय में ये आपके आपकी जो भगवत्ता है, ऐश्वर्य है, आपका यश है, आपकी कीर्ति है, आपकी शोभा है, आपकी विद्या है, इन सब से अणिमादि सिद्धियों से आप पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं, सबके पास आप मौजूद हैं। अरे भाई सबके पास मौजूद है फिर तो हम मिले नहीं ना, कि नहीं मिले इसमें खास कारण क्या है? कि यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जटा दुरधिगमो असताम हृदि गतो स्मृत कंठ मणि असुत्रिपयोगी नाम उभयतोप्यसुखम भगवन अनपगतांतकादनधिरूढ पदात भवत। यदि हमारे हृदय में रहने वाली कामनाओं की जो जटाएं हैं, कामनाओं का जो जंजाल है, उस जंजाल को हमने नहीं मिटाया है तो महाराज जैसे गले के अंदर रहने वाली मणि हमको ज्ञान नहीं होने पर उपलब्ध नहीं होती है, इसी प्रकार से इन कामनाओं में भी आप हैं, काम्यों में भी आप हैं, कामना करने वाले में भी आप हैं, इतने नजदीक हैं, लेकिन कामनाओं में उलझने के कारण से नजदीक होते हुए भी आपका ज्ञान नहीं होता। गले के अंदर कंठी है लेकिन ध्यान नहीं गया तो भाई हमारी कंठी कहां गई, हमारी कंठी कहां गई, गुम गई गुम गई गुम गई। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं कौन सी कंठी, ऐसी कंठी थी क्या? को ऐसी नहीं, यही कंठी थी। तो हमारे गले में है लेकिन हमारी धारणा में यह है कि वो हमसे अलग हो गई, तो भाई फिर तो उसको ढूंढना पड़ेगा और फिर जो है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और किसी के बता देने के बाद कि अहो यही है, तो भाई नासीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। न तो पहले हम परमात्मा से अलग थे और न हम बाद में अलग हुए और न हम आगे कभी अलग होने वाले हैं। मिला मिलाया मिल रहा कद देखा ना रहा न्यारा। जब अनुभव होता है तब यही होता है कि ओह ये तो हमको मिला हुआ ही था, हमसे कभी अलग हुआ ही नहीं था। और महाराज जो आपको जानने वाले लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो आपसे प्राप्त जो सुख और दुख है उसको वह बिल्कुल नहीं गिनते हैं। सुख और दुख की उनके मन में कोई भी महत्ता नहीं है, वे इन सुखों से और दुखों से ऊपर उठे रहते हैं। और हे परमात्मन आप प्रत्येक सर के अंदर तरह तरह से अवतार लेते हैं, लोग आपकी कथाओं को सुनते हैं और सुनकर के बड़े सहज भाव से आपको प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए आप अवतार लेकर के तरह तरह से जीवों को शांति देते हैं। और जिस समय संसार को बनाते हैं तो एक ब्रह्मांड को नहीं, अनंत आप अनंत है महाराज, और कितने ही ब्रह्मांड आपके रोम राजी के अंदर, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतना विलक्षण आपका रूप है। नहीं नहीं कितनी विचित्र बात है, आप ऐसे अनंत हैं कि आप अपने अंत को खुद भी नहीं जानते हैं। माने आपका अंत ऐसा, आपका ऐसा विचित्र है कि आप अपने अंत को नहीं जानते हैं। जैसे भगवान जब सगुण साकार में विराजते हैं इतना दिव्य उनका स्वरूप है कि भगवान स्वयं अपने स्वरूप को देखकर मोहित हो जाए, भगवान स्वयं मोहित हो जाए अपने स्वरूप को देखकर। और कहते हैं कि आपका अंत आप स्वयं नहीं जान सकते, इस प्रकार का आपका अनंत रूप है। द्युपतय एव ते नययु अंतम अनंततया त्वमपि, इंद्रादि देवता नहीं जानते आपके अंत को, आश्चर्य नहीं, त्वमपि आप भी स्वअंतम अंत अनंततया न विजानासी, आप भी अपने अनंत रूप के अंत को नहीं जान सकते। तरह तरह से ब्रह्मांड ये जैसे प्रकाश के अंदर छोटे छोटे कण हम देखते हैं, जालदान के प्रकाश में छोटे छोटे कण देखते हैं, ऐसे आपके थोड़े से अंश में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड फिर रहे हैं। और हम श्रुतियां भी उन्हीं के साथ ही हैं। हम क्या करती हैं, हम आपका निरूपण कैसे करती हैं कि अतत का निषेध करते करते, माने यह परमात्मा नहीं है, ये नहीं है, ऐसे निषेध करते 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 अंत में निषेध की जो परम अवधि है उसमें हम लीन हो जाते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई ये पत्थर जल है, नहीं पत्थर जल नहीं है, जमीन जल नहीं है, ऐसा कह रहा है, तालाब में जा रहा है और जाते जाते ये परमात्मा ये परमात्मा ये जल है ये जल है ये जल है, कि नहीं है नहीं है नहीं है, करते करते जल में डूब जाता है, फिर यह जल है ऐसा वहां नहीं कहता, वो डूब जाता है। इसी प्रकार से सबका निषेध करते 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 निषेध की जो अवधि है, निषेध का जो साक्षी है, उसके तात्पर्य में ही हम लोग अपने वाणी को समाप्त कर देते हैं। देखो नारद, ये श्रुतियों ने कहा है भगवान से, जिस समय में भगवान इस सर्ग को पैदा करते हैं, ये वेद स्तुति है। नारद, ये जीव और ब्रह्म को एकता बताने वाला महान मंत्र है, यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। सनंदन ने जब ये बात कही, सनकादि ऋषियों ने इस ज्ञान को बड़े प्रेम के साथ सुना, इतना उनको आनंद आया इस ज्ञान का कि उन्होंने सनंदन की पूजा की। नारद और दूसरे ऋषियों, आप भी ध्यान देओ, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। इति शेष समामनाय पुराण उपनिषद रस है। कोई कहे कि सारे पुराणों का सार हमको पिलाओ, उपनिषद है उनका सार बताओ, जो सारे उपनिषदों का और सारे पुराणों का और सारे शास्त्रों का एक साथ सम्मेलन करके इनका इनको इकट्ठा करके कोई रस निकाले, कूट कूट के रस निकाले, तो ये रस है, यही हमने आपको सुनाया है। और इसी रस को पी करके फिर सनकादि ऋषि ऐसे मस्त हुए कि सब संसार में वे बेरोक टोक भटकने लगे, लोकों में सबको यही ज्ञान दिया। और हे ब्रह्मा के बेटा नारद, सनकादि जैसे तुम्हारे भाई ब्रह्मा के बेटा है, तुम भी ब्रह्मा के बेटा हो, तुम विचार करो कि तुम संसार में किस लिए आए हो, इसी ज्ञान के प्रचार के लिए आए हो। तुम जाओ और ये जो हमने एक रस बनाया है, ये जीवनीय रस है। बेचारे संसार में प्राणी भोगों से दुखी है, चिंताओं से ग्रस्त है, उन लोगों को जा करके ये उपनिषद रस जबरदस्ती पिला दो, ताकि उनका संसार का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाए। धारियंश्चरगां कामम कामानाम भर्जनम निर्णाम, लोगों की कामनाएं सदा के लिए नष्ट हो जाए। कहते हैं नारद जी महाराज ने ये बात सुनी, हे परीक्षित, उस समय में पूर्ण और श्रुत धरे है। नारद जी कहते हैं कि इतने दिन तक मैं सुनाता ही रहा, आज मैं जब सुना हूं तो मेरा सुनने का काम आज पूरा हुआ है। पूर्ण श्रुत धरे राजन, वो इतने आनंदित हुए नारद जी, इतने आनंदित हुए इस वेद स्तुति को सुनकर के, उन्होंने भगवान नारायण को नमस्कार करते हुए कहा कि हे महाराज, आप कृष्ण हैं, कोई तो कभी तो आप लीलाओं से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और कभी आप दिव्य ज्ञान को सुना करके हमें अपने ओर आकृष्ट कर रहे हैं। आप निर्मल कीर्ति वाले हैं, संपूर्ण प्राणियों की आप आत्मा हो और उन लोगों के कल्याण के लिए ही आप विराजमान हो। आपने मन में विचार कर लिया है कि सबका कल्याण हो, तो महाराज उसी कल्याण के लिए आपने ये दिव्य बात हमको सुनाई है। इस प्रकार से नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करने के बाद उस उपनिषद रस से ऐसे मस्त हो गए, इतनी मस्ती आई उनको, अब उनको केवल ये वेद स्तुति का प्रकरण ही चढ़ गया दिमाग में, और वहां से वे भगवान को प्रणाम करके रवाना हुए। और हे परीक्षित, विचार किया कि इस उपनिषद रस को मैं सबको पिलाऊं, पिलाने का साधन क्या है? पिलाने के साधन तो भाई संतों की लेखनी है, संतों के पास चला जाएगा, संत सबको पिलाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पिताजी के वहां आश्रम पर आए और आश्रम पर आकर के कहा कि वेद व्यास जी बहुत लिख दिया, महाभारत लिख दिया, वेदों का अभ्यास कर दिया, पुराणों को लिख दिया, उपनिषदों को लिख दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन थोड़ी सी बात हमारी ये भी लिखो आप। अब वो नारद जी के द्वारा बताए हुए इसी उपनिषद रस को जब उन्होंने लिखा और सुना, तब उन्होंने ये भागवत बनाई। और वही भागवत भैया आजकल सब आप लोगों के पास में है। तस्मी तद वर्णयामासे नारायण मुखाच्छ्रुतम, और वही सब कुछ उनकी कृपा से मुझे मिला है, वो मैंने तुमको सुनाया है। तो राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया होगा कि श्रुतियां हैं ये परमात्मा का तात्पर्य के द्वारा वर्णन करती है, साक्षात वर्णन श्रुतियां कर नहीं सकती हैं। और हे परीक्षित, मैं उस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान के लिए कहता हूं, जिनकी केवल एक उत्प्रेक्षा के कारण, केवल उनके संकल्प से संसार बना है। संसार के मध्य में भी वही है, अंत में भी वही है, आदि में भी वही है, जो प्रकृति और जीव के स्वामी है और जो इस संसार को बनाकर इस संसार के अंदर ही प्रवेश किए हैं, और जो जीव और जीव के काम आने वाली प्रकृति संसार इनके नियामक बने हुए हैं, और जो परमात्मा अपने पर आई हुई माया को सांप के समान छोड़ देते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, यम संपद्य जहा त्यजा मनुषयी सुप्त कुलायम यथा, और जिस परमात्मा को प्राप्त करके जीव अपनी माया का त्याग करने में समर्थ होता है, और जिस परमात्मा का जन्म यहां किसी कर्म के बंधन के कारण से नहीं होता है, और जिनके जन्म का कोई कारण होता ही नहीं, वे सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, ऐसे परमात्मा का हम लोग नित्य निरंतर ध्यान करते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान कथा के रूप में आप सबको अपने आश्रय में लिए हुए हैं। वेद स्तुति के प्रकरण को सुनने के बाद महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न पैदा हुआ, कि देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में जो लोग शंकर की उपासना करने वाले हैं वे तो धनी है, और लक्ष्मीनाथ भगवान की उपासना करने वाले निर्धन है, जबकि शंकर भगवान तो प्रेतों के साथ रहते हैं, मसानों में रहते हैं, बड़े विरक्त हैं, उदासीन हैं, और इधर भगवान बैकुंठ में रहते हैं, और सिर से लेकर चरणों तक कितने ही आभूषण धारण करने वाले हैं, उनके भक्त गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, ये क्या बात है? भगवान शंकर गरीब तो उनके उपासक भी गरीब, बात समझ में आ सकती थी। और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हैं तो उनके उपासक भी अपने पास खूब धन रखे, पैसा रखे, अच्छी बात है, लेकिन जैसा उपास्य है उसका प्रभाव उपासक पर उल्टा क्यों पड़ रहा है? प्रश्न है, प्रश्न तो कोई कर ही सकता है। तो परीक्षित के इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, शंकर भगवान को भी देखना हो तो बाहर के रूप से मत देखो, और विष्णु भगवान को भी देखना हो तो बाहर के स्वरूप से मत देखो, तुम्हें तत्व के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। परीक्षित, तत्व क्या है? कहते हैं जो शिव तत्व है इस पर विचार करो कि शिव है वो अहंकार का स्वामी है, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग स्वामी है, जैसे हाथ का स्वामी, हाथ का देवता इंद्र है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, नेत्र का देवता सूर्य है, कानों के देवता दिशाएं हैं, कोख के देवता समुद्र है, नाड़ियों के देवता नदियां हैं, ऐसे नाक के देवता अश्विनी कुमार है, तालु के देवता वरुण है, और वाणी के देवता अग्नि है, सब अलग अलग देवता हैं, ऐसे अहंकार के देवता शंकर है। और वो अहंकार तीन प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से देवता पैदा होते हैं, मन पैदा होता है। राजस अहंकार से बुद्धियां पैदा हो, इंद्रियां पैदा होती हैं, प्राण पैदा होते हैं। और तामस अहंकार से ये आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये पांच तत्व पैदा होते हैं। तो तीनों ही अहंकार के स्वामी भगवान शंकर हैं। अब शंकर की उपासना करेगा उसको ये सब अहंकार की चीजें मिलेंगी। भगवान विष्णु है वो तीनों गुणों से अतीत है। बाहर से उनके पास बहुत से आभूषण है लेकिन जो विष्णु तत्व है वो निर्गुण है, प्रकृति से परे है और सर्वाधिक सबको देखने वाला है। इसलिए उसका भजन करने वाला निर्गुण होता है। देखो भगवान विष्णु भीतर से निर्गुण है जिसका प्रभाव उपासक पर बाहर की दृष्टि से पड़ता है। भगवान शंकर हैं जो बाहर से तो निर्गुण दिखते हैं लेकिन भीतर में वे अहंकार के देवता हैं, उस भीतर का प्रभाव उपासक के ऊपर बाहर आकर पड़ता है। तो भक्त और भगवान मिलकर के एक होते हैं। तुम भगवान के भीतर का प्रभाव तक नहीं पहुंचोगे तब फिर भगवान पर पहुंचने का उपाय क्या है? भगवान के पास तो भीतर से पहुंचना चाहिए। भगवान अपने भक्त को भीतर का भाव देते, बाह्य भाव से वो बैकुंठ में रह सकते हैं, लक्ष्मी के पास रह सकते हैं, लेकिन भीतर जो भगवान की निर्गुणता है वो अपने भक्त को देते हैं। और भगवान शंकर है वो अपने भीतर का जो आधिपत्य है, गुणों पर आधिपत्य है और अहंकार के जो देवता है वो अहंकार के देवता भगवान प्रसन्नता से अपने भक्त को देते हैं। बड़ी विचित्र बात है। इस विषय में एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, यही प्रश्न किया था कि आपके उपासक ये गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं उस कृपा के फल में मैं उसका धन है वो हर लेता हूं और उसको गरीब बना देता हूं। संसार में जो गरीब दिखते हैं वो बाहर की दृष्टि से गरीब है लेकिन मेरे कृपा रूपी धन से वे बहुत बड़े धनवान हैं। ततो अधनम संत्यजन्त्यस्य स्वजना दुखितम। कि महाराज, आप उसको गरीब बनाते हैं, इसमें क्या होता है? देखो भाई, मैं उसको गरीब बनाता हूं इसलिए कि लोग उसकी उपेक्षा करने लग जाए। मैं गरीब बनाता हूं इसलिए कि लोगों में उसका सम्मान न रहे। तो लोगों में सम्मान नहीं रहेगा, लोगों से वह दुखी होगा तो संसार से बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगा। एक धनी आदमी का संसार से ऊपर उठना मुश्किल है और एक गरीब आदमी को संसार से ऊपर उठने में कोई कठिनाई नहीं होती। कारण क्या है कि उसको तो केवल भीतर से ही ऊपर उठना है, बाहर का तो धन है नहीं। धनी आदमी को पहले बाहर का धन का सदुपयोग करना पड़ेगा, फिर भीतर से मुंह हटाना पड़ेगा, तब जाकर के वो ऊपर उठेगा। और गरीब आदमी को तो बहुत जल्दी एक ही काम करना है कि बाहर तो कुछ करना है नहीं, भीतर से ही ऊपर उठना है, तो बड़ी सहायता मिलेगी। तो जब वो धन के लिए गरीब आदमी तरह तरह से उद्योग करता है और उसका उद्योग फलीभूत नहीं होता है तब वो बहुत जल्दी ही मेरे अनुग्रह को प्राप्त करके सत्संग में जाता है और उनसे मित्रता करता है, महात्माओं से। तो वास्तव में जो व्यक्ति धन में घमंड करते हैं, धन में प्रेम करते हैं, उन लोगों को मुझसे प्रेम करने का समय कहां मिलेगा? लब्ध राज्य श्रीयोद्धता, क्या बतावे, उनको राज्य मिल जाए, उनको धन मिल जाए, उससे ऐसे उद्धत हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं कि वे विस्मरंती, वे मुझे बेगदाम भूल जाया करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कही बात। तो भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वो व्यक्ति गरीब होता है, और भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है तो वो धनवान होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह, भगवान तो दोनों ही जगह ठीक ही काम करते हैं, परंतु एक बात है, कभी कभी शंकर भगवान इतने भोले और सीधे हैं परीक्षित कि जिसको नहीं देने वाली, नहीं देना चाहिए उसको भी दे देते हैं नहीं देने वाली चीज। भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते हैं। आओ हम तुमको एक बड़ा विचित्र इतिहास सुनाते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शंकर ने भोलापन किया तो वृकासुर के संकट में पड़ गए। बात यह हुई कि वृकासुर था, उसको एक बार नारद जी मिले तो वृकासुर ने पूछा कि नारद जी महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है, इन तीनों में बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, नारद जी ने कहा कि सबसे जल्दी प्रसन्न तो भगवान शंकर होते हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। आशु माने बहुत जल्दी और तोष माने प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। और इतना ही नहीं है, वो थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाए और थोड़े से अपराध से भी नाराज भी हो जाए, तो भाई तुम्हें तो पूजा ही करनी है, नाराज करना है नहीं, भगवान शंकर के शरण में चले जाओ। तुमको पता नहीं, वे संतुष्ट हो गए रावण पर, वे संतुष्ट हो गए बाणासुर पर, और कितना बड़ा ऐश्वर्य मिल गया रावण को, लंका का राज्य जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहता था, और बड़े बड़े देवता लोग भी इतनी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो रावण को मिला। ऐसे ही बाणासुर को कोई कम थोड़ी चीज मिली है, बहुत बड़ी चीज मिली थी बाणासुर को, बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिला। और इतना ही नहीं, इन्होंने धन भी दिया, ऐश्वर्य दिया, और खुद बिचारे संकट में पड़ गए शंकर भगवान। ऐसे भैया वो दयालु है, क्या अच्छी बात है। बिरकासुर वहां से रवाना होकर गया उत्तराखंड में और केदारखंड में गया, वहां जाकर के शंकर जी की आराधना करने लगा, अग्नि प्रज्वलित की, और उस समय में अपने शरीर का अंग काट काट करके भगवान शंकर को भेंट करना चालू किया। एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन हो गए, भगवान नहीं प्रकट हुए, तब सातवां दिन आया। सातवें दिन में वो अपनी तलवार लेकर के सिर काटने ही वाला था कि उस अग्नि में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बड़े दयालु भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के वृकासुर को अपने छाती से लगाए, भुजयोर न्यवारयत दोर्भ्याम, कहते हैं उस समय में उन्होंने बड़े प्रेम से उसका स्पर्श किया तो जितने अंग कटे थे सब उनके स्वस्थ हो गए वृकासुर के। और भगवान ने बड़ी बड़ी प्रसन्नता से पूछा, वृकासुर जो वरदान मांगो सो मांगनो, हम देने के लिए तैयार हैं। प्रिय ये तो ये नृणाम प्रपद्यताम, अरे कोई शरण होकर के हमको जल भी देता है तो हम उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, तुमने तो भैया अपना शरीर काट के दे दिया, तुमने फालतू इतना कष्ट उठाया, तुम केवल प्यार से मेरा नाम ले लेते मैं तो उतने में ही संतुष्ट होने वाला था, अब मांग लो जो हमसे मांगना है। देखो परीक्षित, वो बड़ा पापी था वृकासुर, उसने देखा कि अच्छी बात है, अब तो देना तो पड़ेगा ही, उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वो वहीं पर जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर इसका तात्पर्य नहीं समझ सके, दुर्मनायु, देखे न जाने इस वरदान का क्या करेगा, कुछ भी करो, अपन ने देने के लिए कह दिया है तो इसको दे दो, दे दिया उन्होंने ओम, ऐसा दे दिया। देखो परीक्षित, भगवान शंकर ने सांप को अमृत पिलाने जैसा काम कर दिया। पार्वती जी भी साथ में थी तो वृकासुर ने देखा कि वरदान अपने को मिल गया, आप देखें इस वरदान की परीक्षा करें, और ये पार्वती अपने ले लेवे और वरदान से हम शंकर को जला देवे, पार्वती हमारी स्त्री हो जाएगी। तब वह अपना हाथ लेकर के शंकर भगवान की तरफ दौड़ा। शंकर जी कहने लगे, अरे बेटा ये क्या करते हो, हमारी तरफ कैसे दौड़ते हो? कहने, नहीं हम इस वरदान की परीक्षा कर रहे हैं आपके सिर के ऊपर रख करके। अब शंकर के बड़ी मुश्किल हो गई, शंकर के द्वारा ही वरदान दिया हुआ और परीक्षा ही शंकर के ऊपर की जाए। शंकर भगवान वहां से दौड़े दौड़े भगे, भगते भगते आकाश पर गए, पृथ्वी पर गए, सब जगह घूमे। अब आगे आगे शंकर भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भृकासुर जी दौड़ रहे हैं। शंकर भगवान बहुत परेशानी में पड़ गए, दौड़ते दौड़ते वे बैकुंठ के पास रस्ते पर गए, जो कि भास्वरम तमस परम देदीप्यमान वो वैकुंठ स्थान है, जहां अंधकार का नामो निशान नहीं, भगवान नारायण वहां पर रहते हैं, नारायण परायण लोग वहां पर निवास करते हैं। और यतो ना वर्तते गत, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं होता। भगवान ने देखा कि ओहो आज शंकर जी भोलेपन से संकट में पड़ गए, तो भगवान तो भाई बैकुंठ का नाम ले लेवे, उतने में ही भगवान सहायता कर देवे, फिर बैकुंठ के पास में आ गए अब शंकर भगवान तो क्यों नहीं सहायता करें। तब ये भगवान अब उसी समय में एक बहुत सुंदर ब्रह्मचारी का रूप बना करके, छोटा बालक बन करके, और उधर से बृकासुर आ रहे थे, रस्ते में जाकर खड़े हो गए। अब हाथ में तो उनकी पुस्तक है, खाख में चटाई है, डंडा है, बटुक बन गए छोटे, योग माया से सब कुछ बनना तो जानते ही है, सब कुछ वही तो बने हुए अभी भी। तो मेखला अजिन दंडाक्षर तेजसाग्नि विराज्वलन, जने वो पहनी हुई है और मृगचर्म धारण कर रखा है, दंडा हाथ में ले रखा है, बहुत सुंदर भगवान का रूप। देखो एक तो भगवान का रूप यो ही मोहित करने वाला, और एक भगवान मोहित करने के लिए सुंदर रूप धारण करें तो कितना भगवान मोहित करते हैं वो। अब इधर से बृकासुर जी आए तो भगवान छोटे से तो है ही, छोटे छोटे हाथ और छोटा सा लटका किया सिर से, बृकासुर जी नमस्कार, ऐसे भगवान बोले। और कहने लगे, बृकासुर जी क्या बात है, थोड़ी देर ठहरो तो सही, भगे भगे कहां जा रहे हो, शांत है किम दूर मागत है, बहुत थके हुए मालूम दे रहे हो, हांफ रहे हो, बहुत दूर से दौड़ रहे हो क्या, क्षणम विश्रमिताम, थोड़ी देर आप विश्राम करो। आदि शरीर है तो सब कुछ है और शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, क्यों बिचारे शरीर को कष्ट देते हो। भन्यताम प्रायस पुंभी धृतई स्वार्थान समीहते, कभी कभी क्या होता है, आत्मी लोगों से बात करता है मनुष्य और अपने दिल की बात कह देता है तो उसके बहुत से काम पूरे हो जाते हैं। तो आओ बैठो, किस लिए दौड़ रहे हो मुझे बताओ, आप कहो तो मैं भी आपकी कुछ सहायता करूं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, उनके वाणी नहीं निकल रही थी, उनके मुंह से अमृत बह रहा था, भगवान की उस वाणी को सुना तो गतक क्लम है, उसका सारा हांफना धांपना बंद हो गया, सारा क्लेश दूर हो गया और भगवान को देखने लग गया। भगवान को देख के कहा कि जी आप कहां से आए हैं, अजी हम तो कहीं से ही आओ, तो आप मुझे कैसे जानते हैं, नहीं आपका और मेरा परिचय आप तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। अच्छा अच्छा, क्या आप शंकर को जानते हैं? हां शंकर को, हां जानते तो हैं हम, क्या हुआ शंकर से? शंकर से ये हुआ बटुक, हमने तपस्या करके उससे वरदान ले लिया, जिसके सिर पर हाथ रखे वही भस्म हो जाए, तो मैं देखा कि अब शंकर के सिर पर ही हाथ रख दूं, पार्वती मुझे मिल जाए, कैलाश स्थान मुझे मिल जाए, शिवलोक मुझे मिल जाए और मैं वहां का स्वामी हो जाऊं, शंकर रहेगा तब तक मैं हो नहीं सकता। अब भगवान जोर से हंसे कि ओहो बृकासुर जी कहां ठगाई में आ गए, बृकासुर जी अब क्या बतावे, शंकर ने आज तक किसी को निहाल नहीं किया है, बेचारा दक्ष तो उसका ससुरा ही तो लगता था, भरे यज्ञ स्थल में उसका बेचारे का सिर काट कटवा दिया अपने सैनिक से जाकर, बकरे का सिर जोड़ दिया, सबके बीच में उसका अपमान कर दिया, अपने ससुरे का भी नहीं रहा तो और किसका रहेगा बताओ। और देखो हम लोगों ने तो शंकर को आजकल छोड़ रखा है, इसलिए तुमने देखते भूतों के साथ, प्रेतों के साथ, पिशाचों के साथ रहता है, मसानों में रहता है। उसको तो हमने ऐसा निकाला, उसके पास एक भी आभूषण नहीं रहने दिया, तो वो सर्पों को पलेट पलेट करके और कहता है कि हमारे ये आभूषण है, हमारे आभूषण है। सफा झूठ बोलने वाला है, उसके बातों में तो कभी आना ही नहीं चाहिए। देखो वो सदा झूठ बोलता आया है, तुम अपने वरदान की परीक्षा लेना हो अभी देखो, हम बता दें वो कैसे बोलता है, जरा तुम अपने सिर पर हाथ रख के तो देखो, उसका भी पता चल जाएगा। देखो तो सही तुम, अरे अभी पता चल जाएगा। ऐसे भगवान उसके पीछे पड़े, उसने देखा कि इनकी बात तो बड़ी सच्ची है। तदैनम जही असद वाचम नयद वाक्यानृतम पुनः, और इतनी बात नहीं है, तुम अपने सिर पर हाथ रख के देख लो, और जब उसकी बात झूठी निकली आए फिर देखो उसको जाके मार दो, वो मर भी जाएगा। तो पहले तुम अपने सिर पर हाथ रख के देख लो, जब उसका ये वचन झूठा निकलेगा तो फिर उसको जाके मार देना, वो मारने योग्य है, वो तो लड़ाई करने योग्य है, उसके साथ युद्ध करना चाहिए, मार देना चाहिए। और उसके मन में आया कि बात तो बिल्कुल सच्ची है, तत्काल उसने अपना हाथ लिया और अपने सिर के ऊपर रखा, रखते ही वो धू धू करके जल मरा। जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भवत दिवी, कहते हैं आकाश में कहना बहुत अच्छा, भगवान को नमस्कार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, फूलों की वर्षा होने लगी, देवता लोग बहुत आनंदित हुए। और इधर शंकर भगवान ने देख लिया कि वो जल करके भस्म हो गया, तब भगवान शंकर ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर भगवान ये क्या करते हैं आप, थोड़ा देख कर तो वरदान दीजिए, आप आंख बंद करके दे देते हैं, और ऐसे आप उदार हैं, ऐसे उदार हैं कि उसका आगे आप पर ही प्रभाव पड़ेगा, ये आपने सोचा ही नहीं। अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पाप मना, कोई मैंने इसको नहीं मारा, अपने पाप से ही ये मर गया। आपसे वरदान लिया और आपसे वरदान लेकर आपके ऊपर ही परीक्षा करे और फिर पार्वती को ही अपनी स्त्री बनाना चाहे, ये कोई बात थोड़ा ही थी, इसका बड़ा भारी पाप था, ये पाप से ही नष्ट हो गया, अपने पाप से ही। इस प्रकार से भाई भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। ये भगवान शंकर के संकट मोचन की जो कथा सुनता है उसके संसार में किसी प्रकार के संकट नहीं रहते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे बता रहे हैं, एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी हैं, देखो सारे संसार को बनाते हैं। किसी ने कहा भगवान शंकर हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने कहा देखो विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, बैकुंठ में रहते हैं, कम थोड़े ही हो क्या। ऐसे नहीं, परीक्षा करनी हो तो बाहर से मत करो, भीतर से परीक्षा करो, गुणों से परीक्षा करो। आप गुणों से परीक्षा करें तो भाई क्या है कि जिसके मन में कोई विकार पैदा नहीं हो वो ही बड़ा है। अब परीक्षा कौन करे भाई, परीक्षा तो भगवान की वही कर सकता है जो भगवान से बड़ा हो। भगवान से बड़ा कौन संसार में। तो कहा कि नहीं, अपने को दुनिया के हित के लिए अपने को कुछ न कुछ काम तो करना ही, बताना तो है ही। भृगुजी महाराज को कहा कि आप जाओ, ब्रह्मा के बेटा थे, आप जाइए और परीक्षा लीजिए। भृगुजी ने कहा अच्छी बात। भृगुजी गए ब्रह्मा जी की सभा में, जिस समय में सभा में गए तो वह सीधे जाकर के अपनी जगह बैठ गए, न पिताजी को प्रणाम किया न सभा में वहां बैठे उन लोगों को प्रणाम किया। सभा में जाने का कायदा तो यही है, देखो कोई भी आदमी सभा में आता है वो नमस्कार किस बात का करता है, वो इस बात के लिए करता है कि भाई हम थोड़े देरी से आए और जो आपका वक्तव्य चल रहा है उसके बीच में एक बार जो हमारे पर दृष्टि पड़ने से आपके व्यवधान आ गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, इसके लिए तो वो प्रणाम करते हैं। भृगुजी महाराज गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, न और किसी को प्रणाम किया, सीधे जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी बैठे बैठे तिलमिला गए, बहुत उनको क्रोध आया, मुंह से एक शब्द नहीं कहा। एक तो सभा लगी हुई है और एक नमस्कार न करने का उपालंब देना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। वो चुपचाप सह लिए, लेकिन उनका क्रोध था, वो क्रोध चेहरे पर दिखाया, भौं से दिखाया। भृगुजी महाराज यही परीक्षा करने आए थे, समझ लिए कि भैया ब्रह्मा जी को तो क्रोध आता है। वहां से गए सीधे कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर गए, पता चला कि शंकर भगवान को कि आज भृगु जी आए हैं तत्काल अपनी गुफा से बाहर निकल करके आओ आओ भृगु जी आओ, ऐसा करके उन्होंने अपना हाथ फैलाया और वे चाहते थे कि हम इनको छाती से लगावे, इससे पहले ही वो कुपित हो गए। भृगु जी हटो हटो, नैत्वम असि उत्पतक है, तू तो उत्पतक है, तूने वेदों के मार्ग का उच्छेदन कर दिया है, तुम कुमार्ग पर चलने वाले हो, नहीं नहीं हम तुम्हारे स्पर्श भी नहीं करना चाहते हैं, हमसे दूर रहो। इस प्रकार से जब फटकारा तो हाथ में त्रिशूल था, त्रिशूल लो करके दौड़े शंकर जी। इतने में ही पार्वती जी आई, पैरों में पड़ी कि महाराज लड़ते अच्छे नहीं लगोगे, आप कुटिया में पधारो। विचार हो गया, इनको क्रोध आता है, वहां से गए सीधे बैकुंठ में। उस समय में विष्णु भगवान विराजमान थे, शेष सैया पर तो विराजमान थे और लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान थी। कहते हैं जो ही वे भगवान के पास में गए और जाति आव देखा न ताव देखा, उन्होंने जाति भगवान के छाती में लात मार दी, और छाती में लात मारी तो भगवान उस समय में एकदम अकस्मात खड़े होकर कहने लगे कि महाराज हो अजानताम आगतान वह क्षण तुम मर रथ न प्रभु, देखो देखो मुझे क्षमा करना, मुझे मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं, क्षमा करना। भगवान ये बोल रहे हैं कि मुझे आप क्षमा करना, आप आने वाले हैं और आप लात लगाने वाले हैं, ऐसा मुझे ज्ञान होता तो मैं कोमल चीज आगे करता, ये इतनी कठोर छाती न जाने कितनों का उपालंब सहते सहते, कितने राक्षसों का शस्त्र सहते सहते, कितने पापियों का पाप सहते सहते, कितनों का उद्धार करते करते मेरी छाती थोड़ी कठोर हो गई है, इसलिए इस कठोर छाती से आपके कोमल चरणों में तकलीफ हुई है, कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। भृगु जी महाराज तो वहां पर पानी पानी हो गए और उसके बाद वे वहां से रवाना हुए, और रवाना होकर के और सब ऋषियों के बीच में फूट फूट करके रोने लग गए। भक्ति उत्कंठोष्ट लोचन है, और रोते रोते कहने लगे कि भैया आज तो परीक्षा की बात परीक्षा के लिए कह दिया है, आइंदे भाई न तो परीक्षा लेना और न किसी को परीक्षा के लिए भेजना। कि बात क्या हुई, क्या देखो बड़े आदमियों की परीक्षा लेनी यह तो अपने आप का आपा देना है, पहली पहले तो मुझे आपने पिताजी की परीक्षा के लिए भेजा, मेरे पिता लगते हैं ब्रह्मा जी, अब बताओ ब्रह्मा जी मेरे पिता लगे और मैं उनकी परीक्षा लेऊं, क्या ये बात अच्छी है। और भी ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, शंकर भगवान को तो बहुत क्रोध आया, लेकिन भाई भगवान विष्णु के देखो उनके सामने तो मैंने वचन निकाले, मेरा अपराध एक से एक बढ़कर था, शंकर का ब्रह्मा जी के सामने तो केवल मैं प्रणाम नहीं किया, यही तो मेरा अपराध था, तो सबसे कम अपराध ब्रह्मा जी के सामने किया, मैं नमस्कार नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी से ज्यादा अपराध मैंने शंकर भगवान के साथ किया, तो शंकर भगवान को चाहे जैसे मैंने बोल दिया, लेकिन शरीर के साथ तो मैंने संपर्क नहीं किया ना, तो उनको ब्रह्मा जी से ज्यादा क्रोध आया, वो तो मुझे मारने के लिए दौड़ गए। और उनसे भी बड़ा अपराध मैंने विष्णु का किया कि छाती में जाकर मैंने लात मार दी, और उसका प्रभाव यह हुआ कि वो मेरे से माफी मांगने लग गए। तो भाई निसंकोच हमें सारे संसार के प्राणियों को कह देना चाहिए कि संसार में क्षमाशील है एक भगवान विष्णु ही है, उनकी शरण लेनी चाहिए। सब ऋषि मुनियों ने निर्णय दे दिया और उसके बाद से भगवान विष्णु की कीर्ति फैली। भूयांसम सद्दधुर विष्णु, तब से भगवान की विष्णु की श्रद्धा, विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। क्या इस प्रकार से सब लोगों ने निर्णय ले लिया। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों इस प्रकार से मैंने आपको ये भगवान की कथा सुनाई है, अब आगे सुखदेव जी महाराज दूसरी बात कह रहे हैं। कहते हैं एक बार की बात है, द्वारिका के अंदर एक ब्राह्मण मरे हुए पुत्र को लाकर भगवान श्री कृष्ण के महल के सामने रख करके जोर जोर से विलाप करने लगा कि किसी ब्राह्मण द्रोही के राजा होने पर, किसी मूर्ख बुद्धि के राजा होने पर, विषयी पुरुष के राजा होने पर उसका पाप हम प्रजाओं को भोगना पड़ता है। जो हिंसा विहार में रहता है, माने हिंसा में ही लगा रहता है, दुशील है, अजितेंद्रिय है, ऐसा व्यक्ति राजा होता है तो प्रजा को कष्ट पाना पड़ता है। भगवान के लिए बोल रहा था वो, ऐसे वो एक बेटा मरा, गालियां निकाल के चला गया, दो मरे, तीन मरे, गालियां निकाल के चला गया। ऐसे करते करते परे थे नौवें बाले, उसका नौवां लड़का मरा और उस समय में नौवें लड़के को वहीं पर रख करके गालियां निकालने लगा। तो अर्जुन उस समय में महल में बैठे हुए थे भगवान के पास, अर्जुन से नहीं सहा गया कि कृष्ण के लिए कोई कुछ कह दे। अर्जुन एकदम बाहर आए, बाहर आकर के और ब्राह्मण से कहने लगे, क्यों भाई ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्या संकट है आपका, क्या बतावे, हमारे लड़के मरते जा रहे हैं राजा के पाप से, क्यों मर रहे हैं ये, क्या तुम्हारे यहां पर कोई श्रेष्ठ वीर योद्धा नहीं है। अरे जहां ब्राह्मण धन के लिए रोवे, स्त्री के लिए रोवे, बेटों के लिए रोवे, वे राजा राजा नहीं होते, वे तो राजा के वेश के अंदर कोई असुर ही होते। बताओ तुम्हारे क्या कष्ट है कि मेरे बच्चे मर जाते हैं, तो मैं रक्षा करूंगा। अहम प्रजावाम भगवान रक्षिष्ये दीनयो रिहे, आप पिता, आप बच्चे के जो माता पिता हैं, कोई चिंता मत करो, आपकी रक्षा मैं करूंगा, बच्चे की रक्षा मैं करूंगा, और यदि मैं रक्षा न कर सकूं तो अग्नि के अंदर जल करके भस्म हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन, ये जयद्रथ के सामने की जाने वाली प्रतिज्ञा नहीं है, ये ब्राह्मण के सामने की जाने वाली प्रतिज्ञा है। कहां कर रहे हो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा पहले करते हो तो कृष्ण से सलाह लेकर के करते। हम जो उपालंब दे रहे हैं, ये कृष्ण तक उपालंब जा रहा है, इस उपालंब के प्रतिफल में कृष्ण भी नहीं बोले और बलराम भी नहीं बोले, प्रद्युम्न भी नहीं बोले, तुम किस स्थिति से बोलते हो, तुम्हारे पास कौन सी ताकत है ऐसी? अनिरुद्ध भी कुछ नहीं बचा सके, तुम्हारे पास तो ऐसी कोई ताकत है नहीं कृष्ण से बढ़कर। अर्जुन ने कहा, देखो न तो मैं कृष्ण हूं, न मैं बलराम हूं, न मैं प्रद्युम्न हूं, मैं हूं तो अर्जुन ही हूं। अर्जुन से एक रत्ती भी मैं कम नहीं हूं और अर्जुन से एक रत्ती ज्यादा नहीं हूं, मैं तो अर्जुन ही हूं, लेकिन मेरे पास गांडीव धनुष है, आप कोई किसी प्रकार से मेरे गांडीव धनुष का अपमान मत करना। इस गांडीव धनुष के द्वारा तो मैंने त्र्यंबक तोषणम शंकर को भी प्रसन्न कर लिया है, अब आप मेरे पहले पराक्रम को देखना, उसके बाद बात करना। अरे आपके नौ लड़का मर गए, एक और हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, समझना अर्जुन ने अपनी बात नहीं रखी, और क्या है, नौ की मृत्यु को तुमने सह लिया तो एक की और सह लेना, लेकिन मेरे गांडीव धनुष का मैं सम्मान करता हूं, अतः गांडीव के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छी बात है। अब जब समय आया कि साहब देखो अब बाल बच्चा होने वाला है, तो अर्जुन जी गए वहां, अर्जुन ने जाकर के उस सूतिका गृह को चारों तरफ ऐसे बाणों से आच्छादित कर दिया इसमें किसी का प्रवेश भी न हो।